Urmila Ben is with Baba for many years. She's based in Shantivan and working in producing the Gyan Amrit magazine. Gyan Amrit, malum hai? So she's going to share with us a very interesting topic, karma, integrating it with dharma. So it's not just about action, karma, but also the dharma behind the action. So thank you, Urmila Ben. And this is an opportunity. It's not just going to be class. So question, answer, chit-chat. Chit-chat with the senior this morning. Okay? Thank you. Om Shanti.
Om Shanti. आज का हमारा विषय बहुत ही व्यवहारिक है, जो हम डे टू डे में करते हैं ना, उससे कनेक्टेड है। इसके ऊपर बाबा ने कई मुरलियां चलाई। सबसे पहले हम कर्म की परिभाषा लेंगे। ये वाला फैन चला दिया हल्का सा। कर्म माना एक्शन। जैसे कहा जाता है कि कोई भी क्रिया जब उसमें मनुष्य की वृत्ति मिक्स हो जाती है तो वो कर्म बन जाता है। क्रियाएं तो जानवर भी करते हैं, खाना पीना, सोना उठना, जगना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन इनमें जब हमारी वृत्ति मिल जाती है तो वो कर्म बन जाता है। किसी का श्रेष्ठ कर्म है, किसी का साधारण कर्म है, किसी का निकृष्ट कर्म है। ये एक पहलू है जीवन का, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। और दूसरा पहलू है धर्म। तो धर्म के लिए जगदीश भाई ने अपनी बुक में लिखा है कि धर्म का अर्थ होता है दिव्य गुणों की धारणा। आगे वो लिखते हैं कि नैतिक मूल्यों की धारणा के द्वारा अपने चरित्र को ऊंचा उठाना, साथ ही लोगों के साथ सद्व्यवहार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इसका नाम है धर्म। और जब इस धर्म को जीवन में धारण करते हैं तो हमारी सत्यता, पवित्रता, नम्रता, अंतर्मुखता, संतुष्टता, ये सब इंक्रीज हो जाती है। बाबा ने इस संबंध में दो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी। एक मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को आपने जोड़ लिया, ऐसे ही धर्म और कर्म के टूटे हुए संबंध को भी जोड़ लो। फिर बाबा ने कहा कि जैसे एक झूला होता है तो झूले की दो रस्सी होती है, तो बाबा ने कहा एक रस्सी है कर्म और दूसरी रस्सी है धर्म। मान लीजिए झूले की एक रस्सी मजबूत है और दूसरी लूज है, तो झूलने में मजा नहीं आएगा। या एक बहुत ठीक है और दूसरी टूट गई है तो भी झूलने में मजा नहीं आएगा। झूलने में मजा तब आता है जब दोनों रस्सी बराबर हों और नीचे जो बैठने की जगह है, उसको बाबा ने कहा था वो बैठने की जगह मेरा दिल तख्त है, तो वो जगह उस पे बैठ के मजा आता है, और नहीं तो वो झूला टेढ़ा हो जाता है, ये रस्सी ऊंची ये नीची। तो बाबा ने कहा अगर अतींद्रिय सुख के झूले में झूलना है तो दोनों रस्सी मजबूत रखो। एक और मुरली में बाबा ने बोला कि जीवन में धर्म और कर्म दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने कहा आजकल की दुनिया में जो लोग धर्म को मानते हैं वो कहते हैं हमको कर्म नहीं चाहिए, हम तो कर्म सन्यासी हैं, और जो लोग बहुत कर्म करते हैं वो कहते हैं धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाबा ने कहा संगम युग में इन दोनों को ही लेकर के चलना है। दुनिया में लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक हाथ में दो लड्डू नहीं रह सकते, लेकिन संगम युग में असंभव को ही संभव करके दिखाना है। जब आप बहुत कर्मशील हैं, तब आपको बहुत धर्मशील भी बनना है। ये बाबा ने दूसरी मुरली में कहा। अब मम्मा ने इस संबंध में क्या कहा, मम्मा की एक वाणी है जिसमें मम्मा ने कहा कि दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। पहली प्रकार के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म करने से आत्मा को लेप छेप लगता है, पाप कर्म होते हैं, झूठ बोलनी पड़ती है, गुस्सा आता है, तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। उनको कहते हैं कर्म सन्यासी, जो कर्म छोड़कर के जंगल में चले जाते हैं। तो मम्मा ने क्या कहा कि ठीक है तुम कमाओगे नहीं लेकिन खाओगे तो सही। अगर कमाना कर्म है तो खाना भी तो कर्म है। अगर कमाने में लेपछेप लगता है तो खाने में भी तो लेपछेप लगता है। किसी का कमाया हुआ पाप का हम खाएंगे तो भी तो हम दोषी बनेंगे। तो मम्मा ने कहा कर्म संन्यास नहीं हो सकता। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो उसके लिए मम्मा ने कहा कि जब आदमी पूजा करता है तो उसके मन में शांति होती है, पॉजिटिविटी होती है, कल्याण की भावना होती है। लेकिन आदमी जो आज 18 घंटे भी काम करता है, रात को जाग के भी काम करता है, क्या उसके मन में शांति है? तो फिर वो कर्म पूजा कैसे हुआ? टुडे वर्क इज नॉट वर्शिप बट वर्क इज वॉरशिप। और फिर मम्मा ने कहा तीसरी प्रकार के लोग हैं बाबा के बच्चे, जो कर्म भी करते हैं और धर्म भी करते हैं। न कर्म का त्याग किया न धर्म का त्याग किया, दोनों को पैरेलल चलाते हैं, एक पांव धर्म का दूसरा पांव कर्म का। तो ये हमारी वर्कशॉप का आज का विषय है, प्यारे बाबा के साथ हमारे तीन संबंध। पहला संबंध है पिता मुख्य, दूसरा है शिक्षक और तीसरा है सतगुरु। तो जो पिता का संबंध होता है उस संबंध में पिता बहुत अक्षमाशील और बहुत लिबरल होता है। बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई अनुशासन के लिए दबाव नहीं होता। तो पिता का संबंध कब है? जब हम अमृत वेले उठते हैं, उस समय आप बिना नहाए धोए कैसे भी आके बाबा के सामने बैठ जाओ, नो नीड ऑफ डिसिप्लिन। पांव लंबे करके बैठ जाओ, रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, वो पिता है ना, तो वो आपकी हर बात को लेट गो कर देता है। दूसरा है टीचर, जो उससे थोड़ा सा सख्त है। जब आप क्लास में आते हो, अमृत वेले पिता का रूप पूरा हो गया, 45 मिनट वो पिता है, 4 से 4:45 बजे तक। उसके बाद आप बड़े हो गए तो अब आपको स्कूल जाना है, और हमारे पिता ने अपना रूप बदल करके टीचर का रूप धारण कर लिया, अब वो थोड़े से सख्त हो गए। इसलिए क्लास में समय पर आना है, डायरी पेन लेकर के आना है, नहा धोकर के आना है, नींद नहीं आनी चाहिए, एक्टिव होकर के बैठना है, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुननी है, और क्लास पूरा होने से पहले बीच में उठ के नहीं जाना है, बीच में बात नहीं करनी है। ये सब टीचर का डिसिप्लिन है। लेकिन टीचर फिर भी थोड़ा लिबरल होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है सतगुरु, और सतगुरु तो बहुत सख्त होता है। बस एक शब्द बोलता है, आपने मान लिया तो मान लिया, और नहीं तो सतगुरु की नजरों से गिरा तो वो उठ नहीं सकता। तो सतगुरु का संबंध कहां से शुरू होता है? जैसे ही आपका क्लास पूरा हुआ, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, नाउ यू आर अडल्ट। पढ़ाई पूरी होते होते बच्चा अडल्ट हो जाता है, और जैसे ही अडल्ट होता है उसको काम करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो मुरली क्लास पूरा होते ही जैसे ही हम काम धंधे में जाते हैं, शिव बाबा सतगुरु का रूप धारण कर लेता है। तो धर्म और कर्म का संतुलन सिखाने वाला सतगुरु है। ये आज्ञा सतगुरु की है। सतगुरु क्या कहता है? अगर तुम कर्म के साथ धर्म को लेकर के चलोगे तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कमाई जमा हो जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के अपनी बात पूरी करके फिर आपसे कुछ चिट चैट करूंगी। जैसे एक अनाज का दाना है, चना है, चना समझते हो ना, चने के भीतर दाल है, तो उस चने की कीमत बाजार में 50 रुपए किलो है, और चने के भीतर अगर दाल ना हो तो बाजार में उसकी कीमत 1 रुपए किलो है, छिलके की कीमत 1 रुपए किलो है। तो केवल हम कर्म कर रहे हैं और धर्म नहीं है, तो हमारे कर्म की कीमत 1 रुपए किलो है, और अगर उसमें धर्म की दाल भी है तो उसकी कीमत 50 रुपए किलो। अर्थात ये कर्म कोड़ी तुल्य और ये कर्म हीरे तुल्य। अब आप 50 रुपए किलो की चीज बाजार में बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा? 100 बोरी बेची 50 रुपए किलो के हिसाब से कई लाख मिलेगा, और 100 बोरी बेची 1 रुपए किलो के हिसाब से। तो जिन लोगों के कर्म के साथ धर्म नहीं होता वो क्या कहते हैं, हमें जीवन में कुछ नहीं मिला, ये उनकी भाषा। सारी जिंदगी इतने काम किए, इतने काम किए, हम तो खाली रह गए, कुछ नहीं मिला। और जिनके कर्म के साथ धर्म है वो कहते हैं जी हम तो भरपूर है। दिस मीन्स कर्म एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप कोड़ी तुल्य बनाते हैं या हीरे तुल्य बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। मैंने पहला प्रश्न इसमें लिया है, कर्म के साथ धर्म का मेल करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। हम सबको विचार करना है इसके ऊपर। बाबा ने तो हमको शिक्षा दी, चैलेंजेस क्या हैं? जो उत्तर देना चाहें वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। कर्म के साथ जब हम धर्म को लेकर के चलते हैं तो चुनौती क्या क्या आती है? मैं आपकी बात को ऐसे समझ रही हूँ कि जब हमें अपनी कोई पुरानी चीज बेचनी होती है और अगर हम उसकी कमी कमजोरी बता देते हैं तो सामने वाला लेगा नहीं, तो उस समय हम उसकी कमी कमजोरी को छिपा करके मूल्य लेना चाहते हैं। तो ये भी एक प्रकार से कर्म तो किया लेकिन साथ में धर्म का उल्लंघन हो गया, सच्चाई का उल्लंघन हो गया, ईमानदारी का उल्लंघन हो गया, इसमें हमको थोड़ी बेनिफिट का लालच आ गया, लोभ आ गया। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक स्टीक एग्जांपल दिया। रोज का जब हम कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं लालच आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ। ठीक बोला, और बताइए, फिर इसकी चर्चा करेंगे इसको कैसे जीता जाए, और बताइए। हाँ, यस, कई बार कैसे कर्म हो जाते हैं, अनजान कर्म हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं किया लेकिन अनजाने में हो गया और उसका गलत रिजल्ट निकला। लेकिन उसका एग्जांपल देंगे तो हम थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे अनजाने में कौन सा कर्म हुआ और उसका क्या रिजल्ट निकला। एग्जाम्पल से अपन थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। और किसी को आता है चुनौती? भाई साहब आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा आगे आके थोड़ा। हाँ, मुझ पे भी आते हैं। भाई साहब ने कहा कि कई बार हम कर्म में झूठ बोलते हैं, अगर नहीं बोले तो हमारा काम नहीं होता, ये एक चुनौती है। दूसरे भाई साहब कह रही हैं कि कई बार हम झूठ बोलते हैं तो उससे दूसरे का भला हो जाता है, तो उसको हम किस श्रेणी में लेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। हाँ भाई, आवाज थोड़ी मेरे तक नहीं आ रही है। ये दिनचर्या में, दिनचर्या के जो हमारे कर्म हैं उसमें चुनौती आती है पवित्रता में और शुद्ध भोजन में, वो भी राइट है, क्योंकि भोजन करना एक कर्म है, लेकिन आप भोजन कैसा कर रही हैं, कैसी कमाई से कर रही हैं, किस भाव से कर रही हैं, कैसे स्थान पे बैठ के कर रही हैं, कैसे पदार्थ खा रही हैं, ये सब चीजें धर्म में शामिल है। उन सब भोजन रूपी कर्म को करते धर्म है या धर्म को छोड़ के केवल पेट भर रही हैं? वो तो जानवर भी भर लेता है, पेट भरना एक कर्म है, लेकिन पेट भरने के साथ साथ धर्म का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है, ये भी एक चुनौती है, राइट। और किसी का है तो फिर हम आबेन जी थोड़ा सा लाउड, या तो दूसरा माइक है क्या? बाबा के पास जाने के लिए क्या करना है? कौन बाबा के पास तो आए बैठे हो आप, कर्म करते हुए योग, योग के लिए हमको क्या करना है? अच्छा, वो भी है। अब हमने प्रश्न में से कई प्रश्न निकल आए, पहले हम उन भाई साहब के प्रश्न को लेते हैं कि अगर मेरे झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो तो वो किस श्रेणी में जाएगा। देखिए, कुछ ऐसी जो, भाई साहब एक फैन बंद कर दीजिए, बहुत ठंडी हो गई। कुछ ऐसे झूठ होते हैं जो सत्य से भी बढ़कर होते हैं, उसमें हम तीन एग्जाम्पल लेंगे। पहला झूठ, माँ बोलती है। आपको पता है जो जिसने बल्ब का आविष्कार किया उनका नाम क्या था? थॉमस एडिसन। उसके टीचर ने उसके हाथ में एक चिट्ठी दी थी और वो चिट्ठी कहा था अपनी माँ को पकड़ा देना। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है, ये मंदबुद्धि है। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और बच्चे को कहा, बेटा चिट्ठी में ये लिखा है कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत लो है और तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इतने बुद्धिमान बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते। तो माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, वो स्कूल नहीं पढ़ा सकता, तुमको मैं पढ़ाऊंगी। तो ये माँ ने एक झूठ बोला, लेकिन इस झूठ से क्या हुआ, वो देखो कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। दूसरा झूठ, सीमा पर जो सिपाही होते हैं, देश की रक्षा में जो लोग होते हैं, जासूस होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि तुम बताओ तुम्हारे देश के जो खुफिया चीजें हैं वो कहाँ है, और वो कहते हैं हमको मालूम नहीं है, या वो गलत जगह बता देते हैं। ये भी एक सरासर झूठ बोलते हैं वो, लेकिन ये झूठ भी कल्याणकारी है, क्योंकि उनको एक जगह का पता पड़ गया, बमबारी कर दी तो लाखों लोगों का नुकसान होगा। तीसरी झूठ, डॉक्टर बोलता है, उससे मरीज पूछता है मैं कब ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर को पता ये ठीक होने वाला नहीं है, सीधा ऊपर ही जाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलता है कि बस तुम एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे, बस 10 दिन में ठीक हो जाओगे, बस 1 महीने में ठीक हो जाओगे, फिर देखना तुम दौड़ोगे, तुम खेलोगे, तुम सब कुछ करोगे, ऐसे करके ना उसको धैर्य देता रहता है। तो ये भी एक प्रकार से झूठी बोल रहा है ना, जानते हुए भी, लेकिन इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, सामने वाले की खुशी के लिए वो बोल रहा है, इसमें भी हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। और कई बार किसको कंसोलेशन देने के लिए हम अपने सच के ऊपर शुगर कोटेड करके उसको सुनाते हैं, उसमें भी हमारा कोई पाप नहीं लगता। बाबा ने कहा, बच्ची सच को एकदम सीधा मत सुनाओ, किसी की डेथ हो गई अब सीधा कहो तुम्हारे फलाने की डेथ हो गई, नहीं, थोड़ा सा उस जबान को मीठा बना करके सुनाओ, तो उसमें भी हमारा कोई पाप नहीं बनता है। ठीक है भाई साहब, मीठा कैसे बनाएं? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि हम कैसे मीठा बनाएं। आपने एक कहानी सुनी है हाथी वाली? एक हाथी था, अच्छा कहानी सुना देती हूँ। हाथी वाली कहानी से भी एक राजा के, वो वाली कहानी ज्यादा सटीक है। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया। राजा ने अपना हाथ दिखाया तो ज्योतिषी ने जैसे ही हाथ देखा तो कहता, महाराज आपकी आंखों के सामने आपके घर का एक एक आदमी चला जाएगा, आपके देखते देखते। आपकी लकीरों में ये लिखा हुआ है, बुढ़ापे में आप अकेले पड़ जाओगे। तो राजा ने कहा, ये अशुभ बोलता है, इसको जेल में डाल दो। फिर दूसरा ज्योतिषी आया, उसको हाथ दिखाया, महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबसे आप दीर्घायु हैं। आपने ऐसे क्या पुण्य किए जिसके कारण आपको इतनी लंबी आयु मिली? तो राजा ने कहा, बहुत शुभ बोलता है, इसको इनाम दे दो। अब आप बताइए दोनों बातों में क्या अंतर है? केवल प्रेजेंट करने के तरीके में अंतर है, मीनिंग तो एक ही है ना। तो हम बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद उसके अंग को काटता है तो वो चिल्लाता नहीं, और अगर बिना बेहोश किए चाकू लेके उसकी तरफ जाए तो पेशेंट भाग जाएगा। तो अगर आप भी किसी का परिवर्तन करना चाहते हो, किसी से कोई आदत छुड़ाना चाहते हो, किसी की कोई कमी बताना चाहते हो, तो पहले उसे बेहोश कर दो। बेहोश कैसे करेंगे? उसकी खूब महिमा करो, खूब महिमा करो, और खूब महिमा करने के बाद उसको उसकी छोटी सी कमी बता दो। इसको कहते हैं कमी तो बताई, कड़वी बात तो बताई, लेकिन शुगर कोटेड करके बताई। जैसे वो शुगर कोटेड कैप्सूल को मरीज स्वालो कर लेता है, ऐसे ही फिर वो भी उसको हजम कर लेगा। अगले सवाल पे आएं या इसमें कुछ और चर्चा करनी है? नेक्स्ट, अपने बहन जी का सवाल था, कर्म करते हुए बाबा के पास कैसे जाए? मान लीजिए हम किचन में काम कर रहे हैं, अब काम करते हुए हमको योग करना है, उसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप महसूस करो कि मैं आत्मा हाथों से कर्म कर रही हूँ। जैसे मम्मा के जीवन की एक घटना है, मम्मा अनाज साफ कर रही थी तो बच्चे आए और बच्चों ने कहा, मम्मा मम्मा आप क्यों अनाज साफ कर रही हो, हम करेंगे ना? तो मम्मा ने कहा, मैं कहाँ साफ कर रही हूँ। तो कहा, मम्मा आप इतनी देर से लगे हुए हो, हमें बुलाया क्यों नहीं? तो मम्मा ने कहा, मैं नहीं, मेरे नौकर साफ कर रही, मैं तो बाबा के पास बैठी हूँ। नौकरों को हमने काम में लगा दिया और मैं परम धाम गई, एक तरीका। दूसरा तरीका, जैसे आज बाबा ने स्लोगन बोला, स्वरूप की स्मृति में टिके रहना ही लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस स्थिति है। तो मैं इसको मन ही मन रिपीट कर रही हूँ, मेरे हाथ काम कर रही हैं, मैं स्वरूपस्थ आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ, काम कर रही हूँ। ये भी एक योग का तरीका है। तीसरा तरीका जिसको बाबा कहते हैं ट्रस्टी, जैसे कोई सेल्समैन शर्ट बेच रहा है और उसको याद रहता है मेरा मालिक पीछे बैठा है, अगर मैं 100 शर्ट बेचूंगा तो हर एक शर्ट पे मुझे कमीशन मिलने वाला है। तो ऐसे ही मैं जहां भी काम कर रहा हूं, मैं निमित्त हूं और मेरा मालिक मेरी बैकबोन है, वो मुझे देख रहा है, मेरे नंबर लगा रहा है, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसमें मेरी भाग्य की एडिशन हो रही है। मेरा मालिक मेरे पीछे खड़ा है, मुझे देख रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई बच्चा कहीं भी कुछ भी करता है तो बाबा को एक एक सेकंड का रिपोर्ट है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। बताता नहीं है लेकिन है सब बाबा के पास। तो ये और कई तरीके हैं, आप उसे छोटा बच्चा बना सकते हो। हमारी एक माता जी है गुजरात की, वो कहती है मैंने बाबा को बच्चा बना रखा है और मुझे काम करते ऐसे लगता है कि वो मेरा पल्ला पकड़ के चल रहा है। छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ का पल्ला पकड़ के पीछे पीछे घूमता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो ये भी एक अनुभव है। नेक्स्ट, किसी का प्रश्न रह गया? उन्होंने कहा था पवित्र बनने में और शुद्ध भोजन खाने में चैलेंजेज आते हैं, उसको आगे के प्रश्नों में वो आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है धर्म संकट किसे कहा जाता है? कर्म संकट नहीं कहा जाता, धर्म संकट। वैसे हमने जो चर्चा की उसमें धर्म संकट आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा इसके ऊपर और इसको एलैबोरेट करेंगे। धर्म संकट क्या है? मेरा जो धर्म है वो संकट में है, ये धर्म संकट है। कब कब धर्म संकट की सिचुएशन आती है? कभी आपने धर्म संकट का सामना किया? धर्म संकट है, एक तरफ कर्म खींचता है और दूसरी तरफ धर्म खींचता है, धर्म संकट। किसी ने सिचुएशन का सामना किया? भाई साहब आप आगे आइएगा, कुछ सुनाना चाहते हैं ना? आगे आएंगे तो थोड़ी आवाज स्पष्ट होगी। बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, ये माइक रखा है, आगे आ जाइएगा, आगे आइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, इस पे भी करेंगे चर्चा। अच्छा, और कोई एग्जांपल बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा, बातें रह जाएंगी हमारी। हाँ जी, और बताइएगा। इन्होंने कहा मिलिट्री में रहते दारू बेचनी पड़ती है, ये धर्म संकट है। कोई अच्छा काम है पर हम कर नहीं पाते हैं, ये धर्म संकट है। जब धर्म संकट में पड़ रहा है वो धर्म संकट है। और बताइए इसका कोई एग्जांपल। हाँ जी, हाँ जी, माइक ले लीजिए।
वो भाई ने जैसा पूछा, मेरे क्वेश्चन भी सेम ही है। मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ ना, तो मैं सर्विस कैशियर हूँ, तो मेरे हाथ से नॉन वेज मुझे बेचना पड़ता है, लाइक आई स्कैन एंड देन दे पे मी। सो सिगरेट भी कभी कभार मुझे बेचना पड़ता है, वो लोग मुझे पे करता है। तो मेरे दिल में ऐसा होता है, क्योंकि बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये तो पता चल गया ना, ये तो, पर वो मेरा जॉब है। सब्जी भी लाइक पैकेट में जो आता है वो भी मैं स्कैन करती हूँ, और नॉन वेज मीट वगैरह वो भी मैं स्कैन करके वो लोग हमें पे करते हैं। तो इसमें क्या?
इसकी भी चर्चा करेंगे।
ओके, थैंक यू।
और किसी का कोई? एक्चुअली धर्म संकट के दो पहलू हैं, एक है मानसिक पहलू और एक है विजिबल पहलू। अब जैसे हम मानसिक पहलू की चर्चा करते हैं, मैंने आपके साथ एक सौदा किया, आप मेरे से एक चीज 100 रुपए में खरीदने का आज वायदा कर लेते हो, बहन जी ये चीज मुझे ही देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगी, ठीक है? मैंने इनसे पक्का वायदा कर लिया, आपके अलावा ये चीज किसी को नहीं मिलेगी, आपको ही मिलेगी, आप मुझे 100 रुपए भी दे गए, बस चीज आपके हाथ में आनी बाकी है। इतनी देर में इधर से एक व्यक्ति आता है, कहता है नहीं मैं 150 में ले लूंगा, ये चीज मुझे दे दो। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं 50 रुपए का फायदा देख करके और मैं उस चीज को उसे दे देती हूँ, और फिर ये बहन कहती है कि चीज मुझे दो, तो मैं इसके आगे झूठ बोलती हूँ, मैं कहती हूँ वो चीज तो खो गई, वो तो मैं बेचना ही नहीं चाहती, गलती से सौदा कर लिया था, लेकिन नहीं मेरे को बेचनी नहीं है, मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया है, आप अपने 100 रुपए ले जाइए। तो मैंने अपने धर्म को, अपनी सच्चाई को, अपनी वाणी को, अपने वचन को संकट में डाल करके 50 रुपए कमा तो लिए, लेकिन अपने वचन को तो संकट में डाल दिया। अब इस तरह की ये जो कमाई है, इसमें किसी और का रोल नहीं है, केवल मेरा रोल है। मैं अगर अपनी सच्चाई पे अडिग रहूं तो मैं उसके 150 रुपए को ठुकरा सकती हूं, नहीं जी मैं वचन दे चुकी हूं और मुझे अपने वचन का पालन करना है, मेरे वचन की कीमत 50 रुपए से अधिक है। तो मैं अगर अपनी सच्चाई पे अडिग रहती हूं तो जरूरी बात है 50 रुपए का मुझे लॉस होगा, और मैं 50 रुपए कमाती हूं तो मेरे वचन का लॉस होगा। अब दोनों में से मुझे किसका लॉस करना है, इसको कहते हैं धर्म संकट। अगर मैं धर्म को महमियत दूंगी तो मैं अपने वचन पे अडिग रहूंगी। ये मैंने 100 रुपए की बात की, ये सौदा करोड़ों का भी हो सकता है और ये सौदा और भी कई तरीके से हो सकता है। और अगर मैंने अपने वचन की अहमियत नहीं पैसे को देखा तो मैं वचन को तोड़ करके और पैसे की तरफ लुढ़क जाऊंगी, एक तो ये होता है। लेकिन इसमें ज्ञान के हिसाब से मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, मुझे अपने वचन पे अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर के लिए मेरी विश्वसनीयता फिर बनी रहेगी और उस व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते बने रहेंगे, और नहीं तो इसके साथ तो मेरे रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे, वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे और उसका भी पता नहीं है वो निभाए के जीवन में ना निभाए, ये धर्म संकट है। दूसरा धर्म संकट को हम इस रीति से देखते हैं कि जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती हूं और ना ही मैं सिगरेट पीती हूं, लेकिन मुझे जॉब की जरूरत है और पैसे की जरूरत है और मुझे इसके अलावा कोई जॉब नहीं मिल रही है। या भारत में जैसे एक भाई ज्ञान में चला साकार बाबा के टाइम, तो उस वो शराब का ठेका था उसका, तो बाबा ने कहा बच्चे तू इस धंधे को चेंज कर दे। वो तो कमांडर था आर्मी का, रिटायर होके आया था, बाद में उसने शराब का ठेका शुरू किया था, उसको पेंशन मिलती थी और बाद में परिवार समर्पित हो गया तो उसने ठेका बंद कर दिया। लेकिन सबके लिए शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता होगा, क्योंकि सबको नया जॉब तुरंत मिल जाए ऐसा नहीं है। तो वहां हमको आत्मा को कर्म से डिटैच करना है, क्योंकि मैं आत्मा ना तो नॉनवेज खाती हूं ना मैं सिगरेट पीती हूं, मैं डिटैच होकर के केवल कर्म कर रही हूं, क्योंकि मुझे सैलरी की सख्त जरूरत है परिवार चलाने के लिए, और अगर मुझे कोई इससे अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं उसे ढूंढ भी रही हूं, मैं वो भी करने को तैयार हूं, लेकिन फिलहाल मुझे ये करना पड़ रहा है। तो इसमें मजबूरी में आपकी आत्मा को ग्लानी नहीं महसूस करनी है, क्योंकि आप ना खाते हैं और ना उसको यूज करते हैं, आपके हाथ टच कर रही है, आत्मा टच नहीं कर रही है, इसलिए आपको दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे पहले पहले विदेश में हमारी बहनें सेवा में गई तो किसी ने अपने घर में उनको रखा, उसी फ्रिज में उनका मांस रखा और उसी फ्रिज में इनकी ब्रेड रखी है, इधर फ्रिज में मांस है इधर फ्रिज में ब्रेड है, ब्रेड निकाल करके ये लोग गर्म करके खा रही। अब ये धर्म संकट है, जिस घर में ये रह रही हैं उसके फ्रिज में मांस है, क्या करें, उस घर को छोड़ के नहीं भाग सकते, दूसरा घर मिल नहीं रहा तो वहीं से निकाल करके ब्रेड खा के सेवा पे जाते, समझो ऐसे महीना भर रहे, तो ये धर्म संकट है, रहने का उद्देश्य नहीं है पर महीना हमको निकालना है। तो ऐसे में हमको अपने मन को समझाना पड़ता है कि कुछ दिन की ये सिचुएशन है, उसके बाद हम चेंज हो जाएंगे। भाई साहब ने मिलिट्री की बात पूछी, देखिए मिलिट्री में तो मिलिट्री वाले गोली मारने का भी आदेश देते हैं, भले आप अहिंसक हैं, डबल अहिंसक हैं, पर आपको गोली मारनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। आपको दारू बेचने की ड्यूटी मिलिट्री में मिली है, अगर आप अपने साहब को कह करके अपनी ड्यूटी चेंज करवा सकते हो, भाई मुझे आप दूसरी चीज बेचने के लिए दे दीजिए या मैं, और वो अगर आपकी ड्यूटी चेंज कर देता है तो ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यहां तो मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, आप साक्षी होके बोतल पकड़ाइए और बाबा की याद में खो जाइए। बोतल को देख के आप सोचिए ना कि मैं ज्ञान अमृत बेच रहा हूं, आप अपने मन में तो विजन यही बनाइए ना कि मैं ज्ञान अमृत की बोतल बेच रहा हूं। मन में विजन बनाने में क्या जाता है, आप सोचो ही मत कि मैं शराब बेच रहा हूं, क्योंकि आपके हाथ कर्म कर रहे हैं, आपकी आत्मा तो हाथों से डिटैच है। मैं बाबा के पास हूं, जब भी एक बोतल बेचें, मैंने एक ज्ञान अमृत की बोतल बेची, मैंने दो ज्ञान अमृत की बोतल बेची, मैंने तीन बेची, आप उसको उस रूप में देखी। क्योंकि हम किस चीज को किस एंगल से देखते हैं, हमको वही तो चेंज करना है ना। जैसे बाबा कहता है कोई महिला देखे आप उसको देवी देखो, भले वो कैसी भी महिला हो, आप उसको सोचो ये महालक्ष्मी का रूप है, ये देवी का रूप है, आपकी वृत्ति खराब नहीं होगी। नारी चाहे जैसी भी हो, हमें क्या लेना देना है, समझ गए ना, हमको तो अपनी वृत्ति को बचाना है। तो उस कर्म को करते हुए मेरी वृत्ति गंदी ना हो, मुझे अपनी वृत्ति को सेफ रखना है, ये मेरा धर्म है और मुझे अपने उस धर्म की रक्षा करनी है। बाकी हाथों से तो कई बार कई काम करने पड़ जाते। और कुछ इसमें कुछ और कुछ ऐड करना है आपको, और कोई विचार? पकाना पड़ता है, हाँ पकाना पड़ता है तो थोड़ा सा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। वैसे तो देखो शास्त्र में लिखा है मांस काटने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, ये सबके सब दोषी। अगर आपको लगता है कोई और जॉब मिल सकता है, जो मेरी समझ है, वो खाता है घर में, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से दृढ़ बनना पड़ेगा, थोड़ी सी आत्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जैसे इंडिया में ऐसी मैंने बहुत फैमिलीज देखी हैं, तो वहां महिलाएं ये कह देती हैं कि देखो हम आपको खाने से मना नहीं करते, लेकिन मेरे घर में ये चीज नहीं आएगी। इंडिया में हो सकता है चल जाता हो, क्योंकि इंडिया में फिर भी लोग धर्म से थोड़े जुड़े हैं, विदेश की कैसी सिचुएशन है वो देखना पड़ेगा। या फिर महिला ये कह देती है कि मैं मेरे बर्तन अलग रखूंगी, आप अपने अलग बर्तन रख करके खुद पका लो, लेकिन मैं नहीं पका के दूंगी। एक भाई आता था सेंटर पे, एक महिला आती थी, तो वो भाई खास सेंटर पे आया, कहा बहन जी जब से ये आपके यहाँ आने लगी है इसने मांस पकाना बंद कर दिया है, आप इसको कहो ना मुझे पका करके दे, आप कहोगे तो ये मानेगी। तब बहन जी ने कहा था कि भैया ये हमारा नियम नहीं है, आप बाहर खाओ जो मर्जी खाना है, होटलों में खाओ, लेकिन घर में पकाना या बहन जी के हाथों से पकवाना ये हमारा नियम नहीं। तो बहन जी ने साफ मना कर दिया कि तुम घर में नहीं खा सकते और बहन जी पका के नहीं देगी, बाहर जो मर्जी करो। तो ऐसा तो आप थोड़ा सा कह सकते हो, कोई बीमारी का बहाना बना सकते हो, कोई व्रत का बहाना बना सकते हो। बाबा ने शुरू शुरू में कई बहाने बहनों को सिखाए थे, जैसे पवित्रता के लिए कराची में एक बहन ने बाबा को बहाना किया था कि मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु ने मुझे कहा कि तुम पवित्र रहो। तो पति ने पूछा कि मेरे पूछे बिना तुमने विष्णु को हाँ क्यों की? तब उस बहन ने कहा तुम बड़े हो कि विष्णु बड़ा है। तो ऐसे कुछ ना कुछ बहाना कर सकते हो। सपने में देवता आया और उसने कहा कि तुम बीमार इसलिए रहती हो कि तुम ये बनाती हो, अगर तुम ये बनाना छोड़ दोगी तो ठीक हो जाओगी। मेरा कुल गुरु आया, मेरी माँ का गुरु आया, सास का गुरु सपने में आया। इंडिया में पता है क्या हुआ, एक बार एक बहन थी तो उसकी जो सास थी वो बहुत अच्छी थी और उसने शरीर छोड़ दिया और वो अपनी बहू के शरीर में आने लगी। जैसे बाबा कहते हैं ना ब्राह्मण के तन में आत्मा आ जाती है, तो घर में जब कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अपनी बहू के शरीर में आके वो प्रॉब्लम सोल्व करके जाती थी। फिर वो बहू ज्ञान में चल पड़ी, ज्ञान में चल पड़ी तो पति, बहू का पति यानी के सास का बेटा, उसको सेंटर नहीं जाने देता था। तो एक दिन उसने ऐसा ड्रामा किया कि माँ आ गई तन में और अपने पति को अपने सामने बिठा लिया और कहती है, बेटा तू इसको आश्रम क्यों नहीं जाने देता, वो तो बहुत अच्छी जगह है, अगर ये वहां जाएगी तो सारे घर का उद्धार हो जाएगा। कहता, अच्छा माँ आज के बाद मैं इसको कभी मना नहीं करूंगा, और उसका रास्ता खुल गया। तो इंडिया में तो ऐसा भी हुआ है, तो कोई ना कोई बहाना अपनाना पड़ेगा। ठीक है बहन जी, यहां से सोच के जाओ कि मैं क्या बहाना बना सकती। हाँ जी, यहां से बाबा के कमरे में बैठ के कुछ और अच्छा जोरदार बहाना लगा के जाना। अगला चले, दुनिया कई बार हमारे धर्मयुक्त कर्मों को मान्यता नहीं देती। बात वही है, जैसे आप धर्म का संतुलन करोगे तो आपके ससुराल के लोग, खास करके माताओं को प्रॉब्लम आती है, वो आपकी धर्म की बातों को मान्यता नहीं देंगी। आप सच बोलेंगे तो लोग आपको बुद्धू कहेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे तो लोग आपसे काम छुड़वा लेंगे, अरे तुम तो ऑनेस्टी में घर ही लुटा दोगे, तो धोखा भी खा जाओगे। कई सारी बातें होती हैं, दुनिया मान्यता नहीं देती। ऐसे में क्या किया जाए, मेरे धर्मयुक्त कर्मों को दुनिया मान्यता नहीं देती। मैंने मकान बनाया और उसमें एक कमरा सत्संग के लिए बनाया, बाबा का बनाया, उसको देख करके घर के सारे लोग नाराज हैं, क्यों जगह खराब कर दी, ये किराए पे दे देते तो महीने के इसकी बाहर की तरफ शॉप बना लेते, महीने के 2-4 हजार रुपए आ जाते किराए के, तुमने ये जगह खराब कर दी। मैंने मेडिटेशन रूम बनाया, तो दुनिया मान्यता नहीं देती, परिवार मान्यता नहीं देता, ऐसे में क्या करें। एक बात तो उन्होंने बताई, जैसे पति मान्यता नहीं देता सात्विक भोजन को, ऐसे में क्या करें। अरे दुनिया मान्यता दे या ना दे, ऊपर वाला तो दे रहा है, किसकी मान्यता चाहिए, ऊपर वाला तो मान्यता दे रहा है। कहते हैं जिसका रब है उसका सब है, अगर आपके ऊपर वाले से रिश्ते मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अगर ऊपर वाले ने ठप्पा लगा दिया तो आप फेस करते रहो, लेकिन जो ऊपर वाले ने कहा उस पे अडिग रहो, जीत आपकी है। जीत अर्जुन की हुई जिसके साथ भगवान था, कौरवों की नहीं हुई जिसके साथ सेना थी, तो हमको भयभीत नहीं होना है। अगला प्रश्न है, दिनचर्या के कर्मों में धर्म को कैसे इंटीग्रेट करें। इस पे बाबा ने एक बहुत प्यारी मुरली चलाई थी, पूरी मुरली अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, मैं समझती हूँ दिसंबर 70 की मुरली है ये, आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आप बताइए अपने अनुभव के आधार से कैसे इंटीग्रेट करेंगे दिनचर्या में, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट, अमृत वेले से रात तक। सबसे पहले हम अमृत वेला लेते हैं। आप लोग पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ ना, सीता पीछे बैठी है। मॉर्निंग अमृत वेला, बाबा ने कहा था जब आप लौकिक जीवन में उठते थे तो उठना एक कर्म था, लेकिन अब आप ये संकल्प करते हो कि मैं अवतरित आत्मा हूं, ये है उठने के कर्म के साथ धर्म का इंटीग्रेशन। सेकंड नंबर, फ्रेश होते हैं, अमृत वेला पूरा हुआ फिर फ्रेश होते हैं, तो उसमें बाबा ने कहा पहले आप सोचते थे कि मैं नहा रहा हूं, अब आप सोचते हो कि ये मंदिर है और इस मंदिर में बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति विराजमान है। मैं उस मूर्ति के मंदिर को धो रहा हूं, मैं मूर्ति भी हूं और ट्रस्टी भी हूं, दोनों एक साथ, तो मैं मेरे मंदिर को चमका रहा हूं। सुबह सुबह मंदिरों में सफाई शुरू हो जाती है, फिर भक्त आते हैं। तो ये दूसरे कर्म के साथ धर्म का इंटीग्रेशन है। और फिर तीसरा कर्म है मुरली। तो मुरली में एक मिनट में देखूं कोई इम्पोर्टेंट फोन तो नहीं। हेलो, ओम शांति जी। जी भाई साहब, मैं ना थोड़ा विदेशियों की क्लास करा रही हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात कर लूँ, 1 बजे के आसपास, क्योंकि 2 क्लास का। ओके। तीसरा कर्म है मुरली। दुनिया में बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में और हम पढ़ने के कर्म के साथ धर्म का मेल करके बैठे हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई का फल एक जन्म, 30 साल आईएएस बनने में लगे और 30 साल नौकरी की, 1 साल की पढ़ाई के बदले 1 साल की नौकरी, और हम 30-40 साल पढ़े और उसके बाद हमें 2,500 साल का देवताई पद। तो इतनी गुणी प्राप्ति का कारण क्या है? क्योंकि पढ़ाने वाला सर्वोच्च है, पढ़ाई सर्वोच्च है, पढ़ाई निखालस है, बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो हम इस नशे के साथ पढ़ते हैं कि भगवान बोल रहा है और मैं उसका बहुत लाडला प्यारा स्टूडेंट हूं जो इतनी दूर से आके मुझे पढ़ा रहा है। 3-4 दिन पहले मुझे किसी ने एक बात सुनाई, मुझे बहुत नशे की बात लगी वो, कि किसी पिता के पास अगर पैसा ना हो तो वो उधार पैसे लेके बच्चे को पढ़ाता है, और हमारे पिता के पास शरीर नहीं था, उसने उधार शरीर लेकर के हमको पढ़ाया है। दुनिया के पिता पैसा उधार लेते हैं और हमारे पिता ने शरीर उधार लिया है, कितनी बड़ी बात है उधार लेना। और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं या बनाते हैं, उसमें भी मैंने ब्रेकफास्ट तो बनाया, पर बनाने के बाद मुझे थोड़ी मान शान की इच्छा हुई, महिमा की इच्छा हुई, तो मेरे नंबर कटेंगे क्योंकि धर्म गया। या मैंने देरी से बनाया या ठीक नहीं बनाया, खाने वाले खुश नहीं हुए, या मैंने थोड़ा इरिटेशन में बनाया, तो मेरे नंबर उतने ही कटते जाएंगे, कर्म तो हो जाएगा। लेकिन मैंने प्यार से बनाया भी, प्यार से खिलाया भी, और बनाने के बाद फुल स्टॉप भी लगा दिया, तो मुझे फुल नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे दिन भर में हम कितने सारे काम करते हैं, हम अपनी दुकान पे होते हैं, ग्राहकों को सामान बेचते हैं, तो हमने कितना उनको प्यार से बेचा, उन्होंने 2 सवाल पूछे, हमने प्यार से उत्तर दिए, तो वो सब कुछ मेरे धर्म के खाते में जाएगा। कर्म तो किया, पर कितने धर्म के साथ किया उतने मेरे नंबर होंगे। जैसे लौकिक स्टूडेंट होते हैं ना, किसी स्टूडेंट की लिखाई बहुत अच्छी है लेकिन जो उसका कंटेंट है वो बिल्कुल बेकार है, तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट के 50 कट गए। और किसी की लिखाई महात्मा गांधी जैसी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो भी उसको 50 मिलेंगे क्योंकि लिखाई के मार्क्स कट गए। 100 किसको मिलेंगे? जिसकी राइटिंग भी अच्छी है और जिसका कंटेंट भी अच्छा है। तो यहां भी 100 किसको मिलेंगे? जिसका कर्म भी अच्छा है और जिसका धर्म के साथ उसका इंटीग्रेशन भी, उसको 100 के 100 मार्क्स मिलेंगे। और हम कितना कर्म करते हैं, चलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है। मैंने देखते समय आत्मा को देखा, 100 जमा हो गई, आत्मा से नीचे फिसल आई, आंख को देखा, नाक को देखा, चेहरे को देखा, नीचे फिसल आई मैं, तो देखने का कर्म तो हो गया लेकिन धर्म गायब हो गया। बोलने के कर्म में बोला लेकिन आत्मिक भाव से बोला, निमित्त भाव से बोला, बाबा की याद में बोला, और बोलने के बाद फुल स्टॉप लगाया, सुखदाई बोल बोला। तो बोलना एक कर्म है लेकिन ये जो भाव मिक्स किए मैंने, ये धर्म इसके साथ मिक्स हो गए, तो मुझे कर्म के नंबर भी मिलेंगे, धर्म के नंबर भी मिलेंगे। तो ऐसे दिन भर में हम जो भी कर्म करते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में कर्म योग भी कह सकते हैं, लेकिन कर्म योग वो होता है जिसमें हम बाबा की याद में होते हैं, और कर्म के साथ धर्म का मतलब है जिसमें सद्गुणों की धारणा होती है कर्म। बस ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो कर्म योग और कर्म और धर्म का संतुलन लगभग मिलते जुलते विषय ही है। मुझे कहा गया था कि ये जो सेशन है ये लगभग कितने बजे पूरा हो जाएगा, 45 मिनट में पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन हमारे तो 45 से भी ऊपर टाइम हो गया। अभी अगला सेशन कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, या मैं इसी को चलाती रहूं। किसी के, अच्छा बहन जी आ गए हैं, आइए बहन जी, अभी शायद आप आएंगे और मुझे जाना है। हाँ ठीक है, मुझे पहले कुछ और बताया गया था, मैं तो दूसरी जगह जाना है, मुझे दूसरी जगह जाना है। हाँ, यही सब्जेक्ट रहेगा, लोग बदल जाएंगे, ऐसा है। ओम शांति।